नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक मजबूत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है जो देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। नई दिल्ली में आज सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार पहले ही 600 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और आने वाले वर्षों में इसके 1 ट्रिलियन डॉलर को पार करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों पर कहा कि एक बार फिर भारत ने सभी उम्मीदों, अनुमानों और पूर्वानुमानों को पीछे छोड़ दिया है। आज से शुरू हुआ 3 दिन का सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन देश में मजबूत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री कल सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने आज बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। जीविका निधि का उद्देश्य जीविका से जुड़े सामुदायिक सदस्यों को कम ब्याज दरों पर धनराशि आसानी से उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ने अपनी मां के खिलाफ विपक्ष द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर गहरा दुख व्यक्त किया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री श्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। श्री वोंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। भारत की एक्ट ईस्ट नीति सहित अन्य क्षेत्रों में सिंगापुर भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले वर्ष सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत बनाया गया था। गृह मंत्रालय ने नेपाल और भूटान के नागरिकों को जमीनी या हवाई मार्ग से भारत में प्रवेश करने के लिए पहले की तरह पासपोर्ट या वीजा प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त कर दी है। मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी नागरिकों को छूट आदेश 2025 अधिसूचित किया है, जिसमें विशिष्ट व्यक्तियों और वाहकों के लिए वैध पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज और वीजा से संबंधित कुछ प्रमुख छूट दी गई हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म से संबंधित व्यक्ति जो धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के भय से भारत में शरण लेने को मजबूर हुए थे और 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले पासपोर्ट या अन्य वैध दस्तावेजों के बिना भारत पहुंचे थे या जिनके दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें वैध पासपोर्ट और वीजा नियम में छूट दी जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक भारत को कार्बन तटस्थ देश बनाने का लक्ष्य रखा है ताकि कार्बन उत्सर्जन और वायुमंडल से कार्बन अवशोषण के बीच संतुलन बनाया जा सके। नई दिल्ली में आज 20वें वैश्विक संवहनीयता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग भावी पीढ़ियों के लिए खतरा है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों से कपास की निर्बाध खरीद के लिए कपास किसान ऐप का शुभारंभ किया। ये ऐप किसानों को अपना पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान स्थिति का पता लगाने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे कपास खरीद प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और गति आएगी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में बारिश का प्रकोप जारी है। तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राजगीर में चल रही पुरुषों की एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में कल से सुपर 4 के मुकाबले शुरू होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।